તારીખ 31/12/1996 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 50 ઉપર બાંધણીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 23.
મને જીવ કે શુભાશુભ ભાવ કે જે સ્વભાવો છે પુણ્ય ઓર પાપ કા કર્મ બંધ હોતા હૈ ઉસકો ભાવ કર્મ કહેતે હૈ. वो बंधन कैसे मिटे, निरोध हो जाए माने बंधन हो ही नहीं, और बंधन नहीं हुए तो मुक्ति हुए. वो कैसे हुए, भेद ज्ञान से. जो भी शुभाशुभ भाव होते हैं उससे भिन्न ज्ञान में अपना स्वरूप है, उसका तन्मय होकर के ज्ञान में लीन होकर के अनुभव हुए, कोई भेद ज्ञान है. कोई भाव कर्म का और द्रव कर्म का नाश करने का उपाय है. जो फिर तो आज चला था स्वानुभव का विषय कलष्टिका में से, उसमें एक मार्मिक बात थी. तो वो थी कि जो स्वानुभव है वो निर्विकल्प है, अचनातीत है, मनातीत होने से अचिंत्य है. अचिंत्य का मतलब वो है कि चिंतमन में जो आ नहीं सकता. अब क्या है कि हम जब उसका स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इस विषय का विचार चिंतन चलता है. राजमल जी ने एक मार्मिक बात वो कही कि ये जो विचार चिंतन है ये झूठा है. मतलब क्या कि स्वानुभव का और स्वान निर्विकल्प स्वरूप आत्मा का जो विचार चिंतन है और इसका अनुभव है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. स्वानुभव है निर्विकल्प स्वरूप का, निर्विकल्प स्वानुभव इसके आगे है. इसका विकल्प इसके आगे, इसका ही विकल्प इसकी नकल है, असल नहीं. नकल और असल में जितना अंतर है उतना विकल्प और निर्विकल्प में अंतर है. चाहे वो विकल्प निर्विकल्प स्वरूप का हो या निर्विकल्प अनुभव का, तात्पर्य वो है. यानी इसमें से परमार्थ में निकलता है कि मुमुक्षु को आत्मस्वरूप का चिंतन, विकल्प स्वानुभव का चिंतन, स्वानुभव का विकल्प, उसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना चाहिए. अगर इसमें संतुष्ट हुआ तो किस प्रकार से होता है कि पहले तो मैं संसार का विकल्प करता था, व्यापार धंधा का विकल्प करता था, कुटुंब परिवार का विकल्प करता था. अब मैंने सब छोड़ दिया, अब तो सिर्फ मैं मेरे आत्मा का ही विचार विकल्प करता हूं, दूसरा कोई मैं विचार विकल्प नहीं करता, कोई झंझट नहीं, मेरे सब छोड़ दिया. अगर उसमें संतुष्ट हुआ तो वो नकल में धोखा खा गया, जैसे कोई नकली माल में धोखा खाता है. असली सोना और नकली सोना में कितना अंतर है, आता है ना, चैन आता है, गले में कहते हैं. असली का 10,000 लगे और नकली का 10 रुपया लगे, کتنا اصلی سونا کا دو تولے کا ہوئے 10,000 لگ جائے اور نکلی ہوئے تو 10 روپیہ میں ملے. چمک بھی اچھی, نکلی کی چمک بھی اچھی. ایسے وکلپ اور نرکلپ میں اتنا انتر معلوم جس کو ہے وہ کبھی وکلپ میں پھنستا نہیں, دھوکہ کھاتا نہیں. اس لیے سوادھیائے کے دوران ہم کو یہ بات سمجھ میں ملتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن کہیں ہم دھوکہ نہیں کھا جائیں, یہ دھیان میں رکھنے کی بات ہے. اس لیے راجمل جی ذرا زور سے بولتے ہیں کہ یہ وکلپ جھوٹا ہے. آتما کے پرمان نکشیپ سے جو بھی وکلپ آتا ہے وہ وکلپ جھوٹا ہے. تو تمہاری سمجھ میں جو بات وکلپ سے آتی ہے اور اس کا جو پرنمن ہے بہت بڑا انتر ہے. وکلپ میں اور پرنمن میں بہت بڑا انتر ہے. کہیں تم دھوکھا میں نہیں رہ جائے, یہ کہنے کا ابھیپرائے ہے. وہاں دکھ روپ ہے, وکلپ ماتر دکھ روپ تو ہوتے ہی ہے, لیکن وہ دکھ کس کو معلوم پڑتا ہے کہ جس کو ویدن کی سمجھ ہے اس کو. کیونکہ دکھ تو ویدن روپ ہے, دکھ تو ویدن روپ ہے. تو جس کو ویدن کی سمجھ ہے, صحیح سمجھ ہے, فرق ہے, وہ وکلپ میں کبھی بھی دھوکہ کھائے گا. ویدیان کا وشے چل رہا ہے. ویدیان میں کیا ہوتا ہے کہ گیان اور وکلپ بھاو کرو, اس میں گیان میں نراکلتا اور وکلپ میں آکلتا محسوس ہوتی ہے. تب کسی بھی مند سوکشم وکلپ میں بھی ٹھیک بنانا یہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں آئے گا. کیونکہ آکلتا ہے وہ آکلتا ہے, چاہے مند ہو چاہے تیور ہو. اس لیے بھاو کرم کیسے چھوٹے اس کا پرشاد کرم نائک کی نائک روپ سے پرینتی کر, نائک تتو کو لکش میں لے کر کے اس کی مہما آتی آئے گی تو اس کی پرینتی بنے گی کہ پرینتی لاؤ. اور بھاو کرم کے ساتھ تیری ایک میک گانٹھ بند گئی ہے, اس گانٹھ کو تم کھول دے تو وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اور وہ ڈھیلے پڑنے سے امک پرکار کے بھاو کرم تو آئیں گے ہی نہیں, اتپن ہوں گے ہی نہیں. پیچھے جو کوئی تھوڑے رہیں گے یہ بھی چھوٹ جائیں گے. اس لیے تو چیتنیہ دیو کو اندر پرگٹ کر, تیرا چیتنیہ پرماتما کو چیتنیہ دیو کو پرگٹ کر. بھاو کرم توڑنے کا اپائے یہ نائک دیو ہے, بھاو کرم توڑنے کا اپائے تو یہ نائک دیو ہے. نائک دیو جاگرت ہوا, جگ گیا تو بھاو کرم ٹوٹ گیا. نائک دیو سرو روپ سے بلوان ہے, سرو پرکار سے آتما تو بلوان ہے. نائک دیو جو جاگرت ہو جائے تو بھاو کرم ٹوٹ جائے. اس لیے نائک دیو کو انتر سے پرگٹ کرنے پر سب موہ راگ دویش ٹوٹ جائے گا. اس پرکار سے بھاو کرم کا نیرودھ ہوتا ہے اور درو کرم کا نیرودھ تو سوئم ہو جائے گا. یہاں یہ پرشن سماپت ہوتا ہے. प्रश्न आया है, परिभ्रमण की चिंतना की परिणति माने क्या, क्या है कि जब वेदना तीव्र होती है, वेदना तीव्र होती है तो उसकी परिणति बन जाती है, परिणति बन जाती है तो उसके विरुद्ध जो भी परिणाम आते हैं उसकी जागृति हो जाती है और जितना भी उसको अपने अहितकारी परिणामों में रस आता है तो सीधे ही चौंक लगती है कि अरे मेरे को परिभ्रमण तो मेरा बढ़ाना नहीं है, मैंने उदय भावों में और उदय प्रसंगों में रस ले ले करके मेरे परिभ्रमण को बढ़ाया है और पर में अपनत्व करके मेरे परिभ्रमण को बढ़ाया है। तो जिसको ये परिभ्रमण के कारण का नाश करने के लिए अंतर से वेदना आती है उनको एक प्रकार की योग्यता पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण की परिणति, परिभ्रमण की चिंतना की परिणति, चिंतना चिंतन की चिंतना की परिणति। रोग है ये भव रोग है, जैसे रोग की चिंतना की परिणति रोगी को हो जाती है वैसे परिभ्रमण की ये रोग की परिणति तीव्र वेदन के कारण से हो जाती है। एक दांत स्थूल उपयोग को सूक्ष्म करने की कोई पद्धति नहीं होगी, क्या प्रश्न है? उपयोग के विषय में, उपयोग स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। स्थूल उपयोग स्थूल पदार्थों को जानता है और सूक्ष्म उपयोग सूक्ष्म पदार्थों को जानता है। समाधान, उपयोग स्थूल होने का कारण अपने को बाह्य पदार्थ की महिमा है, रुचि है, जिसको जगत के पदार्थों की महिमा है उसका उपयोग स्थूल हो जाएगा। स्थूल उपयोग से क्या होगा कि अपने को नुकसान करने वाले अपने जो भाव हैं वो तो उसको समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, इतना उपयोग स्थूल हो जाएगा। मैंने तीव्र विभाव परिणाम होंगे उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे को मैं कितना नुकसान कर देता हूं। सुबह शुभ में तीव्र रस लेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं मुझे किसको कितना नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि उपयोग स्थूल हो गया। उपयोग स्थूल होने से अपने हित अहित के परिणाम का विवेक छूट जाता है। बाह्य पदार्थों की, बाहर की मैंने बाह्य पदार्थों की एकत्व बुद्धि है, इससे उपयोग स्थूल हो गया है, बुद्धिमान हो सकता है वो आदमी, लेकिन अपने कार्य में स्थूल, अपना प्रयोजन पकड़ नहीं सकता। हित अहित तो अपना प्रयोजन है, हित और अहित अपना होता है, ये तो अपना प्रयोजन है। अपना प्रयोजन को जो नहीं पकड़ता है, इसका उपयोग खेल है। चाहे बुद्धि कितनी भी काम करती हो, उपयोग इसका स्थूल हो गया। बाहर में कहीं गमी नहीं, सूक्ष्म कैसे होता है कि बाहर में कहीं गमी नहीं, कहीं रुचे नहीं, कहीं चैन पड़े नहीं, कहीं सुख लगे नहीं। बाहर में मैंने किसी भी प्रकार के उड़े में भी और इस बाजू ये बाजू सुख मेरे आत्मा में है, मुझे मेरा आत्मा की पहचान कैसी हो, कैसे हो, इस जाति के क्षण प्रतिक्षण चैतन्य की लगनी लगे, आत्मा की लगनी लगे, एक और एक की लगनी लगे, उसका मूल्यांकन हो, महिमा हो, तो उपयोग सूक्ष्म ये बिना रहता आत्मरुचि, आत्मा की महिमा और वैराग्य बाहर में कहीं चैन पड़े, ये एक सिक्का की दो बाजू है। जिसको आत्मा की महिमा है उसको बाह्य पदार्थ की महिमा, उसको कहीं सुख नहीं लगेगा, चैन नहीं लगेगा, क्योंकि वहां से वो विरक्त हो जाता है। तो उपयोग सूक्ष्म होता है। सच्ची रुचि लगे, सच्चा पुरुषार्थ करें, सच्चा कारण प्रकट हो, तो कार्य आए बिना रहता नहीं, उसका कार्य आएगा ही आएगा। जैसे कोई आकुलिया का भी बोवे और आंबा, आंबा बोलते हैं आम्र वृक्ष को, उसमें से प्रकट हो, पैदा हो, ऐसा बनता है। आकुलिया क्या होता है, आकड़ा के पान होते हैं, उसके जो फल है उसका कहते हैं आकुलिया। जो छोटी सी कैरी होती है उसी आकार का होता है, उसका उसका कलर और आकार एक सरीखा होता है, लेकिन बोने पर वो अपना अपना फल देता है। एक साल लगे इसलिए एक बोने से दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं बनता। वैसे आत्मा को यथार्थ पहचाने, चैतन्य का मूल पहचाने, मूल स्वरूप, और पूछे उसमें ज्ञान वैराग्य ध्यान का सिंचन करें, तो वो प्रकट होता है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है। इसका मूल स्वभाव पहचानना करे, पहचान पर बहुत विघ्न है, ज्ञान से बहुत से बातें मैं पहचान की बात लेता हूं। ये स्वभाव है और ये विभाव है, ऐसे विभाव स्वभाव का भेद मैंने अलग 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 उसको करके स्वभाव को पहचाना, पहचानना चाहिए, मैंने वेद ज्ञान द्वारा पहचान करनी चाहिए। सच्ची लगनी हो तो कार्य आए बिना रहता ही नहीं। इसलिए स्वभाव पहचानने का प्रयत्न करना,
बराबर
अंतर में खोज कर मेरा स्वभाव कैसा है, ठकना नहीं। जो आपको स्वभाव है वो अपने ज्ञान की प्रगत पर्याय में प्रकट है, अपनी प्रगट पर्याय में प्रकट है, कहीं अंधेरे में नहीं पड़ा है। पहचानने का हमारा प्रयास होना चाहिए। आत्म स्वभाव ज्ञान में प्रकट होने से उसको ज्ञान स्वभाव भी कहते हैं, उसको ज्ञान स्वभाव भी कहते हैं। तो ज्ञान में ज्ञान स्वभाव क्या, उतना देखना है और उसकी खोज करके पहचान करना है। स्वभाव हमेशा हमेशा सामान्य रूप होता है। स्वभाव का रूप कैसा है,
सामान्य।
इसलिए ज्ञानियों ने ज्ञान विशेष को गौण करा करके सामान्य का पहचान करने का उपदेश दिया है। इसका पहचान करो, स्वभाव की पहचान
करो।
पहचानने का प्रयास करना थकना नहीं। उसका प्रयास करने से कार्य होता है और वही स्वभाव के स्वभाव का सच्चा ग्रहण करने की रीति है, विधि है, पद्धति है। ये तो बात रही समझ की, ये तो बात कही समझ की। अब पहचान का परिगमन का बात होना चाहिए, पहचान के परिणमन की बात होनी
चाहिए।
परिणमन कैसे हो वो प्रयोग का विषय है। परिणमन है यह तो प्रयोग का विषय है। चौथे परिणमन में सामान्य की धारा चल रही है, ज्ञान धारा सबको। उद्देश्य को धारण करके अपने परिणमन में ज्ञान में बुद्धि में उद्देश्य को धारण करके ये क्या है कैसा है प्रयास करना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या, ज्ञान में ये सामान्य स्वभाव क्या है। उसको खोज करके ग्रहण करना चाहिए। यही अपना स्वरूप है, यही अपना रूप है, असल रूप वही है। जहां तक परिणमन पर से पहचान नहीं आएगी यही देखो कि ज्ञान में अनुभव क्या होता है। स्थूल उपयोग में तो ऐसा लगेगा कि पर का अनुभव होता है, जैसे भी ठंड का होता है, वास्तव में वो बात नहीं है। उपयोग को सूक्ष्म करके देखो तो ज्ञान में सिवा ज्ञान और कुछ कोई चीज का कोई अवकाश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि ज्ञान में और कोई चीज आ जाए। ये तो कुछ ठंड नहीं है, जो नरक की शीत पृथ्वी होती है। यहां का एक कण इधर आ जाए, हजारों लोग मर जाए। इतना एक कण भी इस पृथ्वी का इधर आ जाए तो उतना ठंड है, हजारों लोग मर जाए। गर्मी का एक कण है वो भी आ जाए तो हजारों लोग मर जाए। ऐसी परिस्थिति में हमारी आत्मा सागरोपम का काल रही है। कितना
सागरोपम,
करोड़ों अरबों का कोई हिसाब नहीं, इतना लंबा काल तक उसमें गर्मी में शिकाया है, ठंड में जम गया है, फिर भी कुछ हुआ। शक्ति जो अनंत शक्तियां हैं वो वैसी की वैसी है, एक भी शक्ति में कुछ असर नहीं पहुंचा। इतना मजबूत तत्व है, क्योंकि ज्ञान में स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में कुछ आने की गुंजाइश है। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, किसी का प्रवेश होता जो भी होता है, इससे बाहर जो भी होता है ज्ञान से, तो ज्ञान अपने में देखता रहे, ज्ञान अपने में देखता रहे। जब तक स्वभाव का पता नहीं चले तब तक, जैसे आपका हीरा हाथ से गिर गया देखते देखते, तो आपको मालूम है कि इधर ही गिरा है, तो आप कहीं बाहर जाके खोजेंगे क्या? सड़क पे खोजेंगे, आंगन में खोजेंगे कि नहीं? इस कमरा में मैं देखता था मेरे हाथ से गिर गया है, इधर ही कहीं है। जब तक नहीं मिले वहां तक वहां ही ढूंढे, वहां ही खोजे, कहां तक नहीं मिले वहां तक। क्यों? तो पता है कि इधर ही गिरा है, मेरे हाथ से गिरा है, मुझे पता है, कहीं और जगह ढूंढने का कोई कारण नहीं है, बहुत प्रयास करना नहीं है। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप, तेरा परमात्मा तेरे ज्ञान में है। क्या है?
तेरे ज्ञान में,
तेरे ज्ञान में है। कब तक? तो जहां तक नहीं मिले वहां तक। ज्ञानियों ने एड्रेस दे दिया है, पता लगाना तुम्हारा काम है, एड्रेस बता दिया कि इधर है। बाहर में तो कहीं आना जाना होता है, यहां तो कुछ आना जाना भी नहीं, भीतर में है। और ये भी बता दें कि तुमको अपना स्वरूप की भीतर में खोज करने में आपत्ति क्या है, वो तो बताओ, क्या आपत्ति है? कौन तुझे रोकता है ये भी बता। भीतर में तो किसी का प्रवेश है ही नहीं, लेकिन अपनी नजर के आलसी से, नयन से नहीं निहाले हरि को, मिर्खा नयन न हरि ने, नजर की आलस है और कोई बात
नहीं।
अपना स्वरूप को छोड़, मैंने तो मैंने अपना स्वरूप नाम, अपना स्वरूप को छोड़ता नहीं, कभी त्याग नहीं होता। ज्ञान वेदन में से, ज्ञान का वेदन का त्याग कभी नहीं होता, ज्ञान कभी अपना स्वरूप छोड़ता। पहचानने का प्रयास करना वो बात बार बार की चर्चा में आती है कि पहचानो और
पहचानो।
जब तक पहचानोगे नहीं अनुभव के योग्य दशा होगी नहीं, स्वानुभव के योग्य दशा होगी नहीं, और बिना स्वानुभव भोग भ्रमण का अंत नहीं आएगा नहीं। क्लियर कट बात है। तो इतनी साफ और अमूल्य बात मिली है तो फिर प्रमाद करना नहीं चाहिए। लोगों को तो ये बात सुनने को नहीं मिलती, समझने को नहीं मिलती, तो दुनिया सारी संयोग के पीछे पड़ी है। जिसको नहीं मिलता है वो जुटाने के लिए, और जिसको मिलता है वो वृद्धि करने के लिए साथ में आता नहीं। कितना भी हो, करोड़ों अरबों रुपये हो, प्राण फलक में जाएगा। कितनी देर लगेगी? एक पलकार में चला जाएगा, सभी घर परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। जितना भी परिश्रम किया व्यर्थ। यानी कहते कि तुम अपना काम कर लो, दुख से छुपने का काम कर लो। चार सौ पिछोते
जी
पहले से ही शरीर से भिन्नता का जिसने प्रयोगात्मक अभ्यास किया है
जी,
वही मरण समय पुरुषार्थ में टिक सकता है। क्या है कि जो आयु पूरा होता है, मृत्यु का समय आता है, प्राण छूटने के वक्त सबसे अधिक वेदना होती है
जी।
क्या होता है?
सबसे अधिक वेदना
होती है। बहुभाग मनुष्य बेशुद्ध होता है वेदना के कारण से और मृत्यु के भय के कारण से। बेशुद्ध अवस्था में देह त्याग हो जाता है, शुद्ध सामने रहते। तो उस समय इतना दुख नहीं भोगना पड़े
जी,
और आकुलता से उतना नया कर्म नहीं बंधे, इसलिए पूर्व तैयारी हमारी भी
चाहिए।
पहले से ही शरीर से भिन्नता का जिसने प्रयोगात्मक अभ्यास किया है वही मरण समय पुरुषार्थ में टिक सकता है। प्रैक्टिस जिसका हुआ है कुछ कैसे भी प्रसंग में वेद ज्ञान का प्रयोग चालू पड़े, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे रोग की पीड़ा हो, कुछ भी प्रसंग उदय प्रसंग हो शरीर संबंधित
जी,
वेद ज्ञान करता रहे। प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक माने विकल्पात्मक नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले तो समझ लेते हैं बात को और उसका विचार किया करते हैं, ऐसा नहीं लेना है। जो भी हमारी समझ है परिणाम में उसको लागू करें, उसी का नाम प्रयोग है। अमलीकरण का स्टेज है, प्रयोग है वो अमलीकरण का स्टेज है। हमारी समझ का हम अमल करें तो उस प्रकार की प्रैक्टिस होने से शरीर की भिन्नता तो वास्तव में शरीर भिन्न होगा, उस वक्त तो प्रैक्टिस काम में आएगी। वेद ज्ञान के बहुत से पहलू हैं, इसमें एक पहलू ऐसा है तो स्वरूप की सावधानी उसमें होती है और पर की सावधानी छोड़ने का प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है, प्रयास होता है। तो जिसने अपने उदय में शरीर से भिन्नता का प्रयोग किया हो वो आयु छुटने के काल में एकदम ज्ञान से ज्ञान वेदन को पकड़ करके स्वरूप में सावधान हो जाएगा। देह छूट जाएगा इसका पता ही नहीं लगेगा, क्यों? तो स्वरूप में सावधान होने से वो है या नहीं है इसका दान नहीं रहता। तो रहो या छुटो, मैं मेरे ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वरूप में सावधान हूं, मैं मेरे में हूं और मैं मेरे में पूरा पूरा सुरक्षित हूं, पूरा पूरा मैं
सुरक्षित
हूं। फिर चिंता काहे की? जब हमारी सावधानी अनुशांति के पिंड में आ गई फिर अशांति किस बात की? फिर अशांति होने का कोई चांस
नहीं है,
कोई अवसर नहीं। वरना कितना दुख होगा इसका लिमिट रहेगी बेसुध हो जाएगा। इतना दुख दुख दुखी दुखी होकर के सुख शांत को जमा देगा, केवल दुख हो जाएगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल सिद्धांत दिया है सुगानी जी ने यहां कि जिसकी जो रुचि होती है वही मरण के समय मुख्य हो जाती है। जिसकी जो रुचि होती है वही मरण के समय मुख्य हो जाती है, ये सिद्धांत है। जैसे जिसको अपने संयोग की रुचि है तो मृत्यु समय वो क्या करेगा? तो मेरे परिवार को बुला लो, बेटे बेटी जो भी बाहर है उसको बुला लो और उसको बता दो देखो इधर इतना लेना है उतना देना है वो है वो है वो है, क्योंकि कोई रुचि किया है। तो मृत्यु समय वही बात आ जाएगी समझ में, मेरा कल्याण क्या मेरा अकल्याण कितना वो बात उसके समझ में। सामान्यतया संसार में मृत्यु के वक्त सबको बुलाया जाता है, बुला लो सबको। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करते, किसी को भी सामने नहीं रखने का परिवार वाले को। क्या? जिसमें अपनत्व किया है वैसे एक चीज को सामने नहीं रखने, अपनत्व दृढ़ नहीं करने का है, अपनत्व छोड़ने का मौका है। और जो भी आत्मकल्याण का विषय है वही सामने है, उसकी रुचि हो तो वही सामने आएगा। तो मैं इसको बुलाऊ उसको बुलाऊ ये बात हो जाएंगे, परिणाम बहुत बिगड़ेंगे, बहुत बिगड़ेंगे, कर्म भी बहुत बुरे कर्म बनेंगे। जिसकी जो रुचि होती है वही मरण के समय मुख्य हो जाती है। अतः जिसने पहले से ही भिन्नता का अभ्यास किया है वही टिक सकेगा, दूसरा मृत्यु के काल में टिकेगा नहीं, बहुत परिणाम गिर जाएंगे। अब अलग अलग योग्यता वाले के परिणाम कैसे होते हैं इसकी थोड़ी चर्चा किया है। इधर उत्कृष्ट पात्र हुए जिसकी एकाध भव में मुक्ति होने वाली हो, एक भवतारी हुए ऐसा अच्छा ज्ञानी हुए, वही मरण समय निर्विकल समाधि रख सकता है। तो ज्ञानी है, एकाध भव में निर्वाण में जाने वाला है, वो तो मृत्यु के समय इतना पुरुषार्थ करेगा, इतना पुरुषार्थ इसका हो जाएगा, करेगा मैंने चालू हो जाएगा कि मृत्यु देह छुटने के काल में निर्विकल समाधि में आ जाएगा, एकदम स्वानुभव शुद्धोपयोग में आ जाएगा, शुद्धोपयोग में देह छुट जाएगा इसका, और कर्म की निर्जरा देह का ढेर हो जाएगा, कितने कर्म फिर जाएंगे ढेर हो जाएगा सेकंड में, काल कितना एक सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, एक सेकंड के कुछ अंश में कर्म का ढेर हो जाएगा, इतने कर्म खिल जाएंगे। क्यों? कि खरा टाइम में उसने पुरुषार्थ का काम किया, ये खरा वक्त था उसका पुरुषार्थ का। उससे नीचे वाले को मैंने कम योग्यता हो उसको विकल्प पूर्वक किसी तत्व की दृढ़ता का चिंतन चलता है, सविकल्प दशा में आत्मस्वरूप का चिंतन चलेगा, और उससे नीचे वाले को देव शास्त्र गुरु की भक्ति का विकल्प आता है, पंच परमिष्ठ का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें। साधक को तो आकरी तीव्र वेदना आदि हो, हिंदी में भी आकरी शब्द है, आकरी तीव्र वेदना आदि हो, कुछ भी न चले तो भी ध्रुव तत्व की अधिकता तो छूटती ही, अपना स्वरूप की अधिकता नहीं छोड़ेगी, कितनी भी वेदना मेरा जो ध्रुव तत्व है यूं का यूं वैसा का वैसा रहता है, कोई विदना फिदना का प्रवेश मेरे में नहीं है, वेद ज्ञान करेगा। और वेदना को सुखी होता होता जानता रहेगा, दुखी होता हुआ नहीं जानता रहेगा, सुखी होता होता जानता रहेगा। ये हर हालत में दुखी नहीं होने का उपाय है, इलाज है, वरना संसार में अकच्छ दुख के प्रसंग बहुत हैं और संसारी प्राणी बहुत दुखी होता भी है, उस दुख से छुड़ाया है ऐसा कह करके इस दुख से छुड़ाया है।
Sukh Ramayana 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 Sukh Ramayana